मंगलाचरण से पूर्व आपको जान लेना है कि 8 जून को आपकी चौथी परीक्षा जो गुमट सार जीव कांड की अंतिम परीक्षा है वह होने वाली है, गाथा नंबर 128 से। यानी 127 गाथाओं तक आपकी 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं। बहुत अच्छा परिणाम रहा है, सबने खूब परिश्रम करके पढ़ाई करके परीक्षाएं दी हैं और अब चौथी परीक्षा 128 नंबर की गाथा से लेकर और 173 नंबर की गाथा यानी जो गुमट सार जीव कांड सार ग्रंथ है उसमें इतनी ही गाथाएं हैं, तो संपूर्ण गाथाओं की परीक्षा होने वाली है 8 जून को दिन में 3:30 बजे से, जैसे पूर्व की परीक्षाएं हुई हैं। इसी प्रकार से भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के चैट बॉक्स में पेपर डिस्प्ले किया जाएगा और एक प्रश्न की 4 उत्तर पहले की तरह से रहेंगे और एक सही उत्तर पर आपको टिक लगाना रहेगा, सबमिट करना रहेगा और इस प्रकार से आपके गुमट सार की परीक्षा पूर्ण होगी। अब प्रारंभ करती हूँ मंगलाचरण के साथ आज का सत्र। सिद्धम शुद्धम पणमिया जिनिंद वर्णे मि चंद मकलंकम गुणरयण भूषण दयम जीवस परोवणम वोच्छम। 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से जीव की अवस्थाओं को बताने का संकल्प लेकर आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सार जीव कांड नाम के ग्रंथ को रचा है और उसकी प्रमुख प्रमुख गाथाओं को चयन करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने ये सार रूप में गोमट सार जीव कांड सार नाम का जो ग्रंथ दिया अत्यंत उपयोगी और सारभूत ग्रंथ है। इसके स्वाध्याय से ही आप सब साधारण ज्ञानी भी गोमट सार जीव कांड के सार को समझ जाएंगे। इस लक्ष्य से इस ग्रंथ का हमने स्वाध्याय शुरू किया है। 156 गाथाएं हो चुकी हैं। हम इस समय 17 नंबर की प्ररूपणा में मारणा के अंतर्गत सम्यक्त मारणा में चल रहे हैं और आपने सम्यक्त मारणा के अंदर सम्यक्त का स्वरूप मनुष्य गति के अंदर गुण स्थानों की अपेक्षा जीवों का प्रमाण जाना है। क्षायिक सम्यक्त वेदक सम्यक्त उपशम सम्यक्त का लक्षण जान करके 5 लब्धियों के भी आपको नाम बताए गए। ये लब्धियां प्राप्त करके मनुष्य या चारों गति के जीव सम्यक्त के अभिमुख होते हैं और करण लब्धि 5वीं जो लब्धि है उसको प्राप्त करने वाले जीव के नियम से सम्यक दर्शन होता ही होता है। तो आप 157 नंबर की गाथा सम्यक्त के योग्य कौन से जीव होते हैं। चतुर्गति भवो सन्नी चतुर्गति भवो सन्नी पज्जतो सुज्जगो य सागारो
पज्जतो सुज्जगो य सागारो
जागारो सल्लेसो
जागारो सल्लेसो
सलत्ति गो सम्ममुवगमयी।
सलत्ति गो सममुवगमयी
गाथा सम्मुख पढ़िए। चतुर्गति
चतुर्गति भवो सन्नी पज्जतो सुज्जगो य सागारो जागारो सल्लेसो सलत्ति गो सम्ममुवगमयी।
चतुर्गति भव्या संगी पर्याप्ता शुद्ध कश्च साकारः जागरूका सल्लेष्या सलब्धिका सम्यक्त्वमुपगच्छति। इस गाथा के माध्यम से आचार्य देव कहते हैं कि चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यानी चारों गति के जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता रखते हैं। तो चारों गति में से किसी एक जीव किसी एक गति का धारक होता है, माने चाहे मनुष्य गति में है, चाहे नरक गति में, चाहे तिर्यंच गति में और चाहे देव गति में है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें हैं। अर्थात वो जीव भव्य होना चाहिए, जिसके अंदर भव्यता है। भवितुम योग्या, मोक्ष प्राप्त करने की, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने की योग्यता है, वह भव्य होना चाहिए जीव ऐसा। और संगी होना चाहिए मन सहित, यानी कि पंचेंद्री संगी जीव होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, और उसकी विशुद्धि यानी साता आदि के बंध के योग्य परिणति से युक्त जो जीव रहता है, जागृत यानी जागृत अवस्था में प्रगाढ़ निद्रा से युक्त नहीं हो, स्थान गद्दी आदि नितिन अशुभ निद्राओं से रहित हो जीव, साकार उपयोग सहित हो, शुभ लेस्या का धारक हो और करण लब्धि रूप परिणामों का धारक हो, तो वह जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। ये योग्यता धौला आदि ग्रंथों के अंदर जो बताई गई उसी को सार रूप में यहाँ लिया है, और इसी को सार रूप में पूज्यगण ज्ञानमती माताई ने प्रवचन निर्देशिका नाम की पुस्तक के अंदर बहुत ही स्पष्ट रूप से और विस्तृत रूप से इनका वर्णन किया है। तो संक्षेप में आप क्या जानेंगे कि सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला जीव भव्य होना चाहिए, संगी पर्याप्तक होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए और शुभोपयोग से सहित होना चाहिए, तब वह सम्यक्त्व को प्राप्त करने के योग्य जीव रहता है। चलो, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ये सम्यक दर्शन अति सरल भी है और अति दुर्लभ भी है। सरल इसलिए है कि भाव एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे साधे रहे, सच्चे देव साध गुरु पर श्रद्धान किया और अंतरंग में ये लब्धियां प्रकट होकर के और सम्यक दर्शन की योग्यता आ जाएगी, क्योंकि ये चीजें जो है ये अंतरंग की है। सम्यक प्राप्त करने में अंतरंग और बहिरंग दोनों योग्यता होनी चाहिए। तो बहिरंग योग्यता है, क्या है? संगी पर्याप्तक पंचेंद्री जीव होना चाहिए। अंतरंग की योग्यता यह है कि दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षय और क्षयोपशम होना चाहिए। वो चीजें दिखती नहीं है लेकिन अंतरंग में ऑटोमेटिकली सब चीज चला करती है, बस बाह्य निमित्त हमें दिखाई पड़ते हैं। तो बाह्य निमित्तों में ये जानना है कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, बस केवल इतनी इतनी चीजें होनी चाहिए। और पहले ही बताया गया है कि पांच लब्धियों में से क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और तायोग्य, ये पांच चार लब्धियां सामान्य को किसी भव्य अभव्य सभी को हो सकती हैं सामान्य रूप से, और करण लब्धि उसी को होगी जो सम्यक दर्शन के बिल्कुल अभिमुख है, भव्य जीव है, तो उसी को करण लब्धि हो सकती। करण लब्धि होने के बाद नियम से सम्यक्त होता ही होता है। हम इस मारणा की, सम्यक्त मारणा की अंतिम गाथा है 158 नंबर। आपको ये तो ज्ञात ही हो गया है कि बीच बीच में तमाम गाथाओं को छोड़ करके प्रमुख प्रमुख गाथाओं का संकलन करके इसको सार रूप में ये ग्रंथ हमारे लिए प्रदान किया है पूज्य माता जी ने। तो इसलिए कुछ कुछ गाथाएं ही हर प्ररूपणा के अंदर प्रदान की हैं। अणुव्रत और महाव्रत का महत्व बताते हैं अंतिम गाथा के अंदर, सम्यक् मारणा की अंतिम गाथा। चत्तारि विखेतायम अणुवद महावदायम नलहै देवाउगम मोतुम।
नलहै देवाउगम मोतुम
सामुज्य का पढ़िए।
चत्तारिविखेतायम आउगवन्देन होति सामतम अणुवद महावदायम नलहै देवाउगम मोतुम।
चत्वार्यपि क्षेत्राणि आयुष्क बन्धेन भवति सम्यक्त्वम्, अणुव्रत महाव्रतानि न लभते देवायुष्कम् मुक्त्वा। बहुत ही ध्यान देने योग्य ये गाथा है, यानी कि चारों गतियों की जो जीवों को हर प्रकार की फैसिलिटी दी गई है कि आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। पाप कर्म के उदय से नरक और तिर्यंच गति भी मिल गई है, तो वहां पर भी यदि आपके भाव अच्छे हैं और निमित्त अच्छे मिल रहे हैं तो सम्यक तो हो सकता है। तो क्या कहा कि चारों गति संबंधी आयु कर्म का बंद हो जाने पर, देखो गति अलग है और आयु अलग है, जैसे नरक गति नरक आयु, तिर्यंच गति तिर्यंच आयु, मनुष्य गति मनुष्य आयु, देव गति देव आयु। आप एक बात समझिए, गति का बंद होने पर छूट सकती है, आयु का बंद होने पर उस गति में नियम से जाना पड़ेगा, आयु छूटती नहीं। तो कहा है कि चारों गति संबंधी यदि आयु का बंद हो जाता है तो भी सम्यक तो हो सकता है, किंतु देवायु को छोड़कर शेष आयु का बंद होने पर अणुव्रत और महाव्रत नहीं होते। ये सम्यक मार्गणा के अंदर इसलिए बताया कि सम्यक दर्शन तो हो सकता है उन 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 गतियों में जाने के बाद, यानी जो आयु बंद गई उस गति में तो नियम से जाना ही पड़ेगा। बहुत पुरुषार्थ किया राजा श्रेणिक ने, लेकिन उनके नरक आयु का बंद हुआ था। समझना, गति बंद और आयु बंद में अंतर है। गति बंद होता है तो वो छूट सकता है शुभ अशुभ परिणामों के कारण, और आयु का बंद हुआ तो निश्चित रूप से वहां जाना पड़ेगा, बस उसमें उत्कर्षण या अपकर्षण हो सकता है। तो सातवें नरक की आयु का बंद किया राजा श्रेणिक ने, एक दिगंबर मुनिराज के गले में मरे हुए सर्प को डालते समय सर्प का डालना और सातवें नरक की आयु का बंद करना, क्योंकि धर्म से विद्वेष था। रानी चेला ने जो ही जाना कि मुनिराज के गले में आपने सर्प डाला है, एकदम कांप उठी और उसने कहा कि पतिदेव आपने ये क्या किया, आपने अपने नरक का द्वार खोल लिया है क्या। अरे राजा श्रेणिक ने कहा कि वो तो मुनि कब के चले गए होंगे, क्यों चिंता करती हो चेलना, मैंने सर्प डाला है उतार के चले गए होंगे। लेकिन रानी चेलना कहती है यदि वे सच्चे मुनिराज हैं तो वो आए हुए उपसर्ग को स्वयं निवारण नहीं करेंगे, चलो देखते हैं। दोनों के दोनों जाते हैं, मुनिराज के गले में वैसे ही सर्प पड़ा हुआ है और उसके निमित्त से खूब चीटियां चढ़ रही हैं, मुनिराज के शरीर को लहूलुहान कर रही हैं, लेकिन वे भावलिंगी दिगंबर जैन मुनिराज वो उपसर्ग को सहन कर रही हैं। एकदम नरम से कपड़े को लेकर के चीटियां हटाई गईं, सर्प हटाया गया शरीर से और मुनिराज का उपसर्ग दूर होते ही मुनिराज ने आंखें खोली और सामने खड़े पति पत्नी को दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद को प्राप्त करते ही राजा श्रेणी का मन एकदम परिवर्तित हो जाता है, और तब तक उनको नरक आयु का बंद हो चुका था। परिवर्तित होता है कि देखो ये है मुनि, मैंने उपसर्ग किया तो मुझे भी वही आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसने उपसर्ग को दूर किया मेरी रानी चेल्ला ने उसको भी वही आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसे विशेष आशीर्वाद दे देते और मुझे कोई श्राप दे देते। बहुत सारे लोग कहते ना फलाने साधु ने श्राप दे दिया, अगर सच्चे साधु हैं तो कभी भी श्राप नहीं देते हैं। ये दिगंबर जैन शासन की विशेषता है कि साधु लोग श्राप नहीं देते। जिसने जो कुछ किया है उसको अपने कर्म का फल मिलेगा, लेकिन साधु श्राप नहीं देता। वहीं से परिवर्तित हुआ मन राजा श्रेणी का और वे महावीर के समोसरण में जा करके लगातार 30 साल तक उनकी खूब पूजा करते हैं, खूब सेवा करते हैं, माने रोज जाकर भक्ति करते हैं, और उन्हें पता चल गया कि आपके सातवें नरक की आयु का बंद हो गया है। एकदम मन विचलित होता है मैंने क्या किया है, परंतु महावीर की भक्ति करते 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 महानुभाव सातवें नरक की आयु को उन्होंने पहले नरक की आयु में आकर्षित कर लिया, माने घट गई आयु लेकिन नरक में जाना तो पड़ा, और इसलिए कि नरक आयु बनने के बाद छूटती नहीं। अगर केवल गति का बंद किया होता तो छूट जाती, लेकिन आयु का बंद करने के बाद फिर उस गति में निश्चित रूप से जाना पड़ता है। तो प्रथम नरक में गए, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि चारों गति की आयु का बंद हो जाए तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो उन्होंने नरक आयु का बंद होने पर भी भगवान महावीर के समोसरण में छाई सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था। अनंतानुबंधी की चारों कषाय मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, और सम्यक प्रकृति, इन सातों दर्शन होने की प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय कर दिया था। छाई सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था। छाई सम्यक दर्शन सादी अनंत होता है, मतलब कभी ना कभी वो प्राप्त होगा, इसलिए आदि तो है क्योंकि अनादि अनंत हो नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि को ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो सादि हुआ, और अनंत काल तक रहेगा माने वो सम्यक दर्शन, छाई सम्यक दर्शन होने के बाद कभी भी छूटेगा नहीं, वो नियम से मोक्ष ले जाएगा। भले ही बीच में नरक गति को प्राप्त हुए, लेकिन आकर के मनुष्य गति प्राप्त करके और वो छाया सम्यक दर्शन बराबर मोक्ष होने तक, मोक्ष होने के बाद अनंत काल तक उनका पुनः रहेगा। इसलिए चारों गतियों में जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, किंतु एक विशेष बात बताई कि देव आयु को छोड़कर शेष आयु का बंद होने पर अणुव्रत और महाव्रत जीव ग्रहण नहीं कर सकता। यानी जो अणुव्रती और महाव्रती है उनके केवल एक देवायु का बंद होगा, और जिन मनुष्यों के नरक तिर्यंच आयु का बंद हो गया है वो महाव्रत अणुव्रत नहीं धारण कर पाएंगे। सच्चे रूप में अणुव्रत धारण नहीं कर पाएंगे, महाव्रत धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को अपनी परीक्षा करने के लिए अणुव्रत और महाव्रतों को धारण करने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे किसी और आयु का बंध ना होने पाए। एक देवायु का ही बंध हो और देवायु को हो करके पुनः मनुष्य गति में आ करके हम मोक्ष प्राप्त करें। तो चारों गतियों में से किसी भी गति में रहने वाले जीव के चार प्रकार की आयु में से किसी भी आयु का बंध हो जाने पर भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है, और उन उन गतियों में जाकर के भी वहां भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन अणुव्रत या महाव्रत उसी जीव के होंगे जिसके चारों आयु में से केवल देवायु का ही बंद हुआ हो, अथवा किसी भी आयु का बंद नहीं हुआ हो, ना नरक आयु का, ना तिर्यंच आयु का, और ना मनुष्य आयु का। अगर मनुष्य आयु का किसी को बंद हो गया, बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो भोग भूमि का मनुष्य हो जाएगा। मनुष्य से मनुष्य गति सम्यक दृष्टि को नहीं मिल सकती। आज जैसे कभी कभी कह देते हैं ना कि विदेह क्षेत्र में चले गए होंगे, अरे विदेह क्षेत्र में देव बन करके विदेह क्षेत्र में जाएं तो वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन विदेह क्षेत्र के मनुष्य बनने की भावना नहीं करना, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य मिथ्यात्व के योग से होंगे। सम्यक दर्शन यदि है तो मनुष्य से मनुष्य गति की प्राप्ति नहीं होगी। तो अव्यात्माओं, सम्यक मारणा का सार यही समझना कि छायुक सम्यक दर्शन, छायुक समिक सम्यक दर्शन, उपशम सम्यक, सासादन मिश्र और मिथ्यात्, इस प्रकार से सम्यक मार्गणा के छह भेद हैं। कितने भेद हैं? सम्यक मार्गणा के छह भेद हैं, छायिक, छायोपसमिक, औपसमिक, सासादन, मिश्र और मिथ्यात्। मार्गणा में सम्यक मिथ्यात् और मिथ्यात् को भी लिया है, सासाधन को भी लिया है। तो तीन सम्यक दर्शन को तो आपने अच्छे से जान लिया, और सासाधन सम्यक तो जो सम्यक से जीव च्युत होता है, मिथ्यात् तक आता नहीं है, और उसके बीच का काल केवल अंतर मुहूर्त का काल जो है वह सासाधन गुण स्थान को प्राप्त कराने वाला, यानी कि सम्यक की आसाधना करने वाला जीव सासाधन गुण स्थानवर्ती कहलाता है। ऐसे मिश्र की बात है, विरता विरत माने संयता संयत की अवस्था का नाम है विरता विरत, जिसके तत्वों का श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों रहता है। एक तो संयता संयत होते गुण स्थान है, तो उसमें क्या है, संयम और असंयम दोनों रहता है। यहाँ उसकी बात नहीं है, यहाँ है सम्यक्त मार्गणा की बात। तो मिश्र यानी सम्यक मिथ्यात्व जो है वह कैसे होगा कि जिसके तत्वों का श्रद्धान भी है और कभी कभी अश्रद्धान भी हो जाता है। तो वो मिस गुण स्थान वाला सम्यक मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और मिथ्यात्व क्या है? सम्यक्त के साथ मिथ्यात्व का कथन, यानी मिथ्यात्व पूर्वक ही सम्यक दर्शन होगा, जो मिथ्या दृष्टि है उसी को सम्यक दर्शन होगा। तो जिनेन्द्र कथित आप्तादि यानी आप्त आगम और पदार्थों का जब श्रद्धा नहीं हो पाता है या ये जीव श्रद्धा नहीं कर पाता है तो कुदेव कुतत्व आदि का श्रद्धान करता है तो वह मिथ्या दृष्टि है। अब आप समझो, सच्ची बात को कहने वाला यदि मानव है, कोई मनुष्य है, कोई संत है, लेकिन उनको कोई मिथ्या दृष्टि कह रहा है या उनकी बात को गलत कह रहा है जिसने शास्त्र की सही बात को कहा है, लेकिन एक व्यक्ति किसी परंपरा से ग्रसित है, किसी प्रादेशिक परंपरा से ग्रसित है, हठात रहे है, तो वो यदि किसी दूसरे को गलत कह रहा है तो वो भी नियम से सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि अपना सर्टिफिकेट स्वयं नहीं ले सकता। सम्यक दृष्टि का सर्टिफिकेट तो केवल भगवान देते हैं कि हाँ भाई ये सम्यक दृष्टि जीव है जो किसी की निंदा नहीं करता, जो अपने सहधर्मी बंधु को कभी गलत नहीं कहता, जो भंड वचन नहीं बोलता, जो किसी के दिल को नहीं दुखाता, तो वह सम्यक दृष्टि होता है। तो महानुभाव इस प्रकार से कहा है। और अंत में इस अधिकार में कहा कि मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि वाले जीव पाप जीव है। देखो पाप और पुण्य दो ही चीजें हैं संसार में, तो पाप से युक्त पाप जीव, तो कौन से? मिथ्या दृष्टि और सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव पाप जीव है। मिश्र मिश्र गुण स्थान वाले जीव पुण्य पाप के मिश्रित अवस्था वाले जीव हैं। और चौथे गुण स्थान से लेकर यानी असंयत से लेकर और सारे आगे के गुण स्थान वाले जीव पुण्य जीव कहलाते हैं, क्योंकि वे निरंतर अपने सम्यक दर्शन से पुण्य का बंध करते हैं, इसलिए उनको पुण्य जीव कहते हैं। एक बार जिस जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है वह जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है, चाहे कभी भी मोक्ष को प्राप्त करे, लेकिन वह एक न एक दिन मोक्ष को नियम से प्राप्त करेगा। कम से कम अंतर मुहूर्त में, अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वह संसार में रह सकता है। इसलिए आज के स्वाध्याय का सार यही समझना कि करोड़ों उपाय करके भी अपने सम्यक रूपी रत्न को संभाल करके रखना है, उसको प्राप्त करना है, उसको दृढ़ करना है। जय लो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता की जय। और अब यहाँ पर भगवान के समक्ष सहस्त्र नाम मंत्रों के द्वारा 1008 पुष्पों से आराधना होगी। ये जिनेंद्र भगवान की